ายกำลังจะสบายคุณมาแย่งยังใช่ไหมป้าคุณดีนะคุณดีแม่คุณบ้าน
भारत का सबसे प्राण
تو سمجھ کے ہم کو پھر اس کے پاون سلسلے میں جانے کے لیے پتی کا پاون باپ نے بتائے گی باپ کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں یوکتی بتاتا ہوں باپ آتے ہیں کہ اگر آپ استھاپن کر دیں وہ ہے بے حد برسہ دینے والا باپ یہاں سے پھر راجو سکھلاتے ہم راجو کو سیکھ رہے
La सनातन धर्म का ही फाउंडेशन नहीं डाला, धर्म के साथ साथ राज्य का भी फाउंडेशन डाला। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों सत्ताएं एक के हाथ से शुरू हुई, तो वो कोई कौन? जानना पड़े। सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है, वह किसने स्थापन की? किसने स्थापन की? अच्छा तथागत तो ब्राह्मण क्या कहते, किसने स्थापन की राजधानी? कहते क्या है, स्थापन हुई या नहीं? कुछ मुखिया तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापन की स्थापन ब्राह्मण धर्म की और सनातन धर्म की नहीं, क्यों? राजा की स्थापना नहीं होती ब्रह्मा द्वारा, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना नहीं होती, धर्म की स्थापना नहीं होती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय ब्राह्मण तीन धर्म स्थापन नहीं करते, ब्रह्मा द्वारा करते। तो राजधानी किसने स्थापित की? शिव बाबा ने तो की, लेकिन किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा ने तो शहर दिया, अब राजधानी किसके द्वारा? वही ब्रह्मा जो 69 में शरीर छोड़ दिया, ब्राह्मणों की पालना का पाल के बजाया, वही ब्रह्मा कोई ब्राह्मण बच्ची में फिर प्रवेश करके राजधानी की स्थापना का कार्य करता है। बापे समझाते हैं, मैं राजाई प्राप्त कराने के लिए तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, इसलिए सिखलाता हूँ और राजाई प्राप्त कराने के लिए। अर्थात जो आज सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था, वो अभी स्थापन कराता हूँ, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है, आना पड़ता है। ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चले जाएंगे, राजा ही मनुष्य अपने आप स्थापन करते रहेंगे, नहीं, बाप को आना ही इसलिए पड़ता है, राजा स्थापन करने के लिए आना ही पड़ता है। और कब आना पड़ता है? संगमी अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं, राज्य किसका है? पति तो रावण राज्य है, तो बैठे कहाँ है? पति तो दुनिया में बैठे हैं, पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पर नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो नहीं सकते। वहां तो एक धर्म था, इस्लामी बहुत थी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थी, सबका पत्ता साफ हो जाता है। क्या न इस्लामियों का अस्तित्व रहेगा वहां, न बौद्धियों की बौद्धि पता चलेगा और न क्रिश्चियन रहेगी, और कोई धर्म वहां था ही नहीं। वो देवता धर्म अभी प्राय लोग हो गया, प्राय क्यों बात पूरा लोप नहीं हुआ है, प्राय मैंने मोस्टली बहुत कुछ करके लोप हो गया, थोड़ा कुछ है। ये देवता धर्म कैसे भगवान ने स्थापन किया था, ये कोई जानते नहीं। देवता धर्म नाम ही भूल गए, क्या देवता है? देवता या देवता? देवता क्या देवता? सुख देवता। उनका धर्म ही मुख्य क्या होता है? मुख्य धारणा ही उनकी क्या होती है? दूसरों को सुख देना। तो नाम भूल गए तो फिर जरूर काम याद रह गया, तो काम भी भूल गए। हिंदू धर्म कह देते नाम क्या कह देते, हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू बने हिम्मत हिंसा तू मन दूते दूर करने वाले हम कौन से धर्म के हैं? हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। क्या करेंगे? गाय को देखा दे जैसे लोग कहेंगे हम कोई पक्षी मच्छर पशु पक्षी की हिंसा नहीं होने दे, वो भी कहते हम हिंदू तो हिंसा को दूर नहीं होने देते। असली हिंसा का नाम ही नहीं जानते। असली हिंसा क्या है? अभी बात समझा रही है। मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। आगे से पुरानी दुनिया की एंड है। क्या कभी एंड है? अभी जब एंड होती है तो नाम क्या पड़ता है? एंड होती है तो नाम क्या पड़ता है? इंडिया। ये सब तुम ब्राह्मण जानते हो। इसे महाभारी महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। क्या महाभारी महाभारत लड़ाई से एंड हुई थी? तो इंड नाम क्या पड़ा? इंडिया। महाभारत लड़ाई कहो, देवासुर संग्राम कहो, राम रावण युद्ध कहो, उससे युद्ध हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए। कौन खत्म हो गए? सब माना कौन? गौरव भी खत्म हो गए, यादव भी खत्म हो गए और सब पांडव भी खत्म हो गए। कितने बच्चे थे? पांच पांडव बच्चे। और उनमें भी ऊंची स्टेज पे चढ़ते समय सभी क्या हाल हुआ है? सब गड़बड़ क्या? हाँ एक रहा युद्ध इच्छे कौन रहा? जो इस धर्म युद्ध में इच्छे रहा जो रहा और बाकी सब सब खलास हो गए, सब गड़बड़। कितने पांच पांच पांडव बच्चे वो भी पहाड़ों पर गड़बड़। पहाड़ों पर गड़बड़ माने आदमी के स्टेज में इतनी ऊंची स्टेज में पुरुषार्थ किया कि देह अभिमान से गलमन देह को जैसे उन्होंने गलाई दिया। देह देह नहीं, जब अपनी देह ही देह नहीं तो संबंधियों की देह दिखाई पड़ेगी क्या? दादा चाचा मामा काका ताऊ सब सब खलास। देह और देह के संबंध ही खलास। उन्होंने तो स्थूल बातें दिखाई हुई है कि पहाड़ों पर गलमरे पर तो ऐसा कोई थोड़ी होता है कि भगवान आए और सब गलमरे पहाड़ों पर बर्फ सबकी खलास हो जाए। तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? ये तो पाप स्थापन करते हैं। क्या स्थापन करते हैं? कोई नहीं रहा ऐसी बात नहीं है। एक युधिष्ठिर बच्चे का मतलब क्या हुआ कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही सत्ताओं में जिम्मेवारी को निभाने वाले नंबर वार होते हैं। ऐसे नहीं कि कल अथवा जन्मयी तो होती नहीं है, वो होती है नहीं, वो कल नहीं होता जन्मयी नहीं होती है। कल का मतलब लय माना लीन प्रमाणा प्रशस्त रूप से लीन सारी सृष्टि लीन हो गई कुछ नहीं बचा। ऐसी कोई प्रलय नहीं होती है। बाबा को पुकारते हैं पतिता पावन आओ हमारे दुख हरो सुख दो क्योंकि अभी रावण राजी है। तो क्या करें? रावण का राज्य बदल कर किसका राज्य लाए? राम का राज्य लाए। तो रावण राज्य में यथा राजा रानी स्वतंत्रता प्रजा सब वैसे ही राम राज्य में क्या होगा? यथा राजा तथा प्रजा। तो राम का राज्य आएगा या शिव का राज्य आएगा? राज्य तो राम का आएगा, शिव राज्य जी का। राम का राज्य आएगा, शिव राज्य नहीं आएगा, ब्रह्मा राज्य नहीं आएगा, तो मतलब क्या हुआ? जरूर राम की आत्मा के द्वारा परमात्मा आकर के राम राज्य की स्थापना का कार्य करते। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर अभी रावण राज्य आप समझाते हैं। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ उसको सीखते हैं, जो सीखते हैं वो ही आकर मेरी दुनिया में राज्य करते हैं। हम सीखते कि राम राज्य कैसे स्थापन होता है और रावण राज्य कैसे स्थापन होता है। क्या युक्ति बताई? एक की मत से राम राज्य और अनेकों की मत पर चलने से राम राज्य, परंतु ये ज्ञान वहां कुछ भी नहीं रहेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी की बुद्धि में है वो औरों को भी समझाते हैं। नंबर वार तो है ना, सबसे बड़े बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता है। क्या कहा? सब बुद्धि में नहीं टपकता है, इनकी बुद्धि में टपकेगा। जो सर्विस में तत्पर्य रहेंगे जरूर सचिव में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। पाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं, पहले पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। इसका मतलब पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं और बाद में, पहले पहले तो ब्राह्मणों को रचते और बाद में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। किसको रचते हैं? ब्राह्मणों को रचते। क्या ये कि आदमी भी ऐसे किया था? पहले पहले किसकी रचना की? ब्राह्मणों की। और बाद में फिर कौन निकले? ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संघ पर ही होंगे, न सचिव में, न चेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, सचिव में जहाँ अनेक मतें होती, अनेक मतें होंगी तो अंजाम क्या होगा? अनेक मतों पर अंजाम ये होगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा कलह के लिए होता रहे, तो वो हुए आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय है सत्ययुग में, झूठ अनेक प्रकार के होते हैं और सत्य सत्य एक होता है। एक से सत्य आता है और अनेकों से झूठ आता है, तो जरूर संगम पर स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। ये बाइजोली हम खेलते हैं तो पांव और चोटी मिल जाती है। पांव माना कलयुग, कल है कल से कलयुग, और चोटी माना ऊंचते ऊंचे युग संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें ब्राह्मणों में चोटी का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनना है? अभी क्या हो? ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं, ऐसे नहीं देवता बन गई। अभी विराट रूप की जरूर बनाना। बल बाबा कब कब कहते हैं चित्र बनाओ, फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी है बाबा हम आपके छह मास के बच्चे, چار دن کی بچی ہے. کہتے ہیں میں ایک دن کا بچہ ہوں. دادا وراٹ روپ کے چتر میں سب کوئی دکھائی دیا, راکشس بھی دکھائی دیے, جانور بدھی بھی دکھائی دیے, دیوتائیں بھی دکھائی دیے. وراٹ روپ مانے کیا سب کچھ آ گیا, تو ان میں کوئی ایک دن کا بھی بچہ ہے؟ کہتے ہیں میں ایک دن کا بچہ ہوں, ارتھات آج ہی بابا کا بنا ہوں. مغلن شاہ والی بنا ہوں کیا تھا وراٹ روپ کے چتر میں جو ایک دن کا بچہ ہے وہ بھی کس کی منشا والی ہے؟ وہ بھی مکھمنشا والی ہے, وہ بھی کہتا ہے میں ایک دن کا بچہ بنا ہوں. جو جیتے جی باپ کے بنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا ہم آپ کے ہیں. کیا تھا جیتے جی بننے کی بات ہے, مرنے کے بعد باپ کے بننے کی بات نہیں ہے. چھوٹا بچہ تو کہہ نہیں سکتا, کیا کیا نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کے بنے ہیں. چھوٹا بچہ ہوگا وہ پھر کس کی کس کے پاس پہنچے گا؟ باپ کو کہے گا کہ ہم آپ کے بنتے, وہ پھر بھی اپنے لوگ کو ماں باپ کی گود میں پہنچ جائے گا. یہاں بھی تو چھوٹے ہیں, چھوٹے بنا چھوٹی بدھی والی, وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ گیان ہے بڑوں کے لیے. کہتے ہیں بابا ہمارے اس میں پارٹ پرتیک ہونے والا ہے, سرشتی سے سرشت ہے. اس کی طرف اشارہ کیا, برہما کو سرشت سے سرشت نہیں کہیں گے تو ان کی مت پر چلنا ہے. باپ کہتے ہیں اور سبھی باتیں چھوڑ مجھے یاد کرو اور ورثے کو یاد کرو. کیا کیا یاد کرو؟ باپ کو یاد کرو اور ورثے کو یاد کرو. چلتے پھرتے یہ یاد رہنے سے خوشی بھی رہے گی. کون سی یاد؟ باپ کو یاد کرنا اور ورثے کو یاد کرنا. تو دو کو یاد کرے, ایک کو یاد کرے, دو کو یاد کرے. ماں بھی کم یاد کرو سو کہاں گیا ہے؟ باپ ایک کو یاد کرے. کبھی دو کو دو باتیں ہو گئی, کبھی ایک بات کی کیا ہوا؟ مجھے یاد کرو اور ورثے کو یاد کرو. دو کو یاد کرے, ایک کو یاد کرے, بے بیچاری یاد کرے یا آپ بھی بیچاری یاد کرے, پھر ورثے کو یاد نہ کرے. نہیں, جو باپ ہے وہی ورثہ ہے. کیا پانا تھا تو پا لیا, تو کیا پا لیا؟ باپ کو پا لیا مانا سب کچھ پا لیا. چلتے پھرتے یہ یاد رہنے سے خوشی بھی رہے گی. کیا یاد؟ یہ بھی یاد. کون سی یاد؟ کہ باپ میں ہی ورثہ سمایا ہوا ہے. باپ مانا, باپ مانا کیا؟ بندی. باپ مانا بندی نہیں, منوسی سچ برہما باپ. برہما باپ ہو گیا. باپ مانا مانوسی سرشتی کا بیج. وہ منوسی سرشتی کا بیج جب بدھی میں بیٹھ جائے یہ رام ہی ہے, رام راجی کی ستھاپنا کرنے کا نمت اگر اسے پہچان لیا اور اس کو بن گئے تو رام ملا مانا سب کچھ ملا, رام راج ملا. کیونکہ وہ رام اور شیو الگ الگ کیے جا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. سنگم یوگ میں جو رام وہ شیو نراکار اور ساکار, دیہ اور آتما الگ نہیں کر سکتے. اگر الگ کر دیے تو کون سا یوگ ہوا؟ तो सचमुच रेता द्वापर कलयुग हो सकता है, लेकिन संगम में नहीं गएंगे। तो ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद छेड़ती क्यों नहीं है? कौन सी है याद? साकार में निराकार आया हुआ है, क्यों नहीं छेड़ती है याद? क्योंकि जब अब क्या हुआ है? न ठहरने का कारण क्या हुआ है? निश्चय बुद्धि अभी नहीं बने हैं। तुम्हारे को गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आप कहीं की ही मत पर चलूंगा। तो आप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूले होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राजीवाग दिया था जो 84 जन्म लेते लेते हमने गंवाई दिया, अभी फिर वापस दे रही, तो अपार खुशी होनी चाहिए न। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, क्या वो अंदर से काफारी जैसा चढ़ जाएगा कि जो पाना था सो पा लिया, तो खुशी बाहर दिखाई पड़ेगी। यानी लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना, क्या दिखाई पड़ता है कि इन्हों कुछ प्राप्ति। बस अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका होता है? यूं तो सबसे ऊंच तो है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कह करके पुकारते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। क्या कहा है तो ऊंच को, लेकिन उसका धंधा क्या है उस धंधे को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जब बाप आए तब आकर के अपना परिचय दे, क्या परिचय दे कि मेरा ये धंधा है, मेरा ये ऑक्यूपेशन है। क्या ऑक्यूपेशन? पतितों को पावन बना। अभी तुम बच्ची जानती हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है तो खुशी होनी चाहिए ना। हम नरसिंहनारायण बनते हैं, वैकुंठ की राजाई में पहली चीज पहली पहली खुशी कौन सी? कि हम नर से नारायण जैसे बन रहे हैं। कोई भला हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं, जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी भी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की सुन्नत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। ये सब पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए? प्रेसिडेंट गवर्नर आदि को तो नशा है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने के लिए। बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल नहीं सकता है? क्या कहा? कोई किसी से मिलने के लिए कब आता है? बाबा भी कब मिलते नहीं है? किससे किससे नहीं मिलते? तुझे नहीं मिलते फिर किससे मिलते हैं? बच्चों से नहीं मिलते फिर किससे मिलते हैं? जो बच्चे बाप के ऊपर निश्चयवान नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है, उनसे बाप कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। क्या बाबा का पोज है और क्या पोजीशन है? वो तो दिखाते हैं तो उसमें पोज और पोजीशन दिखाई जाती है, तो वो पोज और पोजीशन तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में और कोई जानते ही नहीं, तो जानते ही नहीं तो उनसे बाप मिलते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो तो तुम बच्चों से बाप मिलते हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या उस पोज और पोजीशन को कौन सी पोज और पोजीशन को जिसकी यादगार मंदिरों में रखी हुई है, ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, वो शिव परमात्मा की पोज और पोजीशन को तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो जानते ही नहीं उनसे मैं मिलता ही नहीं, इससे मिलता हूँ। भले ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान है, ऐसे ही नाम रखा लिया है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हम शिव बाबा की संतान है, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं ये नहीं जानते, न बाप को और न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर में खुशी भी रहे, जैसे कन्या की शादी कराते तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं। क्या कहा? पेटी बंद की और गुप्त दान उसमें रख देते हैं, चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तो उनको विश्व की बात चाहिए कि चाबी हाथ में दे देते हैं, कौन से हाथ में? बुद्ध रूपी हाथ में। कृष्ण की अकेले में क्या रखा है? हाँ, विश्व की बात सही रखी है, मैंने पेटी हाथ में रखी है और चाबी कहाँ रखी है? वो विश्व की बात सही अकेले में दिखाते हैं। तुम विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। क्या था? तुम जाएंगे, बाबा तुमको बनाते हैं, मगर तू स्वर्ग में जाने लायक बन नहीं सकते। क्या? जब तक बाबा उनको ज्ञान न देवे, पवित्र न बने, क्या जब तक उनके अंदर वो समझ न आए कि बाप कौन है, और दूसरी बात जब तक वो पवित्र ब्राह्मण न बने, तब तक स्वर्ग में जाने के लायक बन नहीं सकते। मन अपने को सुखी सदाकाल अनुभव कर नहीं सकते, इसलिए नारद का मिसाल भी है। क्या मिसाल है नारद का? मिसाल क्या है? सबको कहता करता था झांझ बजा बजा के, चलो बैकुंठ पे, चलो बैकुंठ पे, और खुद कहाँ ढोलता था? पर नरक की दुनिया में ढोलता था। काम क्या करता था? नाम क्या पड़ा? नार माना क्या अंजल और द माना देने वाला। क्या देता था दूसरों को? है अभी ये दुनिया खलास होने वाली है, कहाँ चलो? स्वर्ग में चलो। खुद काम गोता खाता था, नरक में गोता खाता रहता था। तो नारद का मिसाल है ना, मन भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। आत्मा मन, मन बुद्धि की गति कहाँ है? मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में है या मिट्टी में जा रही है? अगर देह अभिमानी की मिट्टी में जा रही है आत्मा, तो पतित हुई या पावन हुई? पतित ही कहेंगे, चाहे भले ब्राह्मण बना हुआ है नाम का, लेकिन काम क्या है? जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं, जब तक पाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। कौन कौन स्वर्ग में जा नहीं सकते? बच्चे। अच्छा, बच्चे स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। कौन से बच्चे? हाँ, तथागत मान, तो नारद है। नारद मान दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद अपवित्र के अपवित्र ही बनते रहते। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, जो तुम जाकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, दूसरे माने कौन है? दूसरे धर्म पिता है या दूसरा कोई मनुष्य मात्र है, राजा की स्थापना नहीं करता है। क्या धर्म स्थापन करते हैं? धर्म की स्थापना तो कर सकते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर सकते और न किसी को मालूम है कि राजा स्थापन कैसे होती है, राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाकी संबंधों पर आकर भविष्य की जन्म की राजा स्थापन कर रहे हैं, कैसे स्थापन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और राजा स्थापन होती रहती है, नहीं, आकर के क्या करते हैं, राजा स्थापन कर रहे हैं। इस बात को कोई भी जानते नहीं है क्या, कोई भी नहीं जानते कि बाप अभी राजा ही स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य देवता बने थे। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सत्युग में तो कोई शास्त्र आदि होती नहीं। बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर के सृष्टि के आदि मध्यस्थ का ज्ञान सुनाता हूँ। जिसको सुनाता हूँ वो देवी देवता बनते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब अंत में आते हो तो उन्हों को ही आकर के फिर समझाता हूँ। बीच में कब मैं आता ही नहीं हूँ, ऐसे थोड़े कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा। और जो भी धर्म स्थापन करती है वो इस दुनिया के लिए स्थापन करती है। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। आता कहाँ हूँ, कौन से युग में आता हूँ संगम पर, और स्थापना कहाँ के लिए करता हूँ, नई दुनिया की, वो राजा की नई दुनिया के लिए। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। अपना धर्म कौन सा धर्म स्थापन करेगी, क्राइस्ट की आत्मा किसके अंदर में स्थापन करेगी, क्राइस्ट का धर्म स्थापन करेगी। ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं, ये किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और कैसे स्थापन की हुई और किसने स्थापन की, ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, कौन बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, एक ही मंदिर और बिरला मंदिर बनाने वाली तो है ना, तुमसे पूछना चाहिए, तुम ही पूछ सकते हो, बताओ इन्हों का राज्य कभी कब स्थापन होगा। परंतु उनकी तकदीर में तो राज्य पाने का है ही नहीं, इनकी तकदीर में जिन्होंने यादगार मंदिर बनाए हुए हैं उन्हों की तकदीर में नहीं है क्या लक्ष्मी नारायण का राज्य बाग प्राप्त करने का। हाँ अंत में आकर के कुछ सुन ले तो वो स्वर्ग में तो आ जावे, प्रजा तो बन जावे, कौन हजार वेद का मंदिर बनाने वाले, लेकिन खुद राजा बने, राजयों को ठीक करके बाप से राजा ही ले ले रहे, ये नहीं। अंदर तो लक्ष्मी नगर अथवा राधे कृष्ण के बहुत बनाते हैं, पूछना भी उनके लिए चाहिए, मंदिर बनाने वालों के नाम ढूंढ ढूंढ करके निकालने चाहिए, क्या कहा। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, ये राज तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कलप कलप और कोई जान नहीं सकता, अक्षर भी है परंतु ये धार कहते किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहाचारी भी बैठ जाती है, दे अभिमानी की है पहले नंबर की ग्रहाचारी, बाप कहते बच्चे दे ही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का ऐसे कल्याण हो सकता है परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते रहते हैं। राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं, बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समस्या है, मेरे बच्चों को छठ नाम से पकड़ लेती है, क्या ऐसे पकड़ लेती है, नाक से पकड़ती है, कान से भी पकड़ लेती है, ऐसे पकड़ती है, नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती, टांग से नहीं पकड़ती है, नाक और कान से पकड़ने का मतलब क्या है? नाक से क्या होता है, क्या काम होता है? सूंघने का काम होता है। कोई बच्चे हैं दूसरों के पाप पुण्य ज्यादा सूंघेंगे, दूसरा क्या करता है उसकी सूंघ आसानी ज्यादा करेंगे और अपने तरफ अपनी तरफ नहीं देखेंगे। कुत्ता क्या करता है, उसमें कौन सी शक्ति ज्यादा होती है? सूंघने की शक्ति, शक्ति ज्यादा होती है। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं वो नाक की शक्ति से बहुत काम लेते हैं, तो माया क्या करती है फिर ऐसे सूंघा सांगी करने वाले इस्लाम धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म के बच्चों को पहले पकड़ती है। किसको पकड़ती है? जो सूंघा सांगी में लगी रहते और फिर कान से पकड़ती है। कान से पकड़ना माने हाँ सुनी सुनाई बातों में बहुत विश्वास कर लेते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, हाँ बात तो ठीक है। पक्ष से निश्चय बैठ गए, एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से, चारों तरफ अफवाह उड़ती रहती है। तो माया ऐसों को कान और नाक से पकड़ लेती है। माला में तीन चार नंबर में आने वाले आज नहीं है, क्यों नहीं है? माया ने उनको काय से पकड़ा, नाक और कान से पकड़ लिया। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। सबसे बुरी ग्रहचारी किसकी होती है? नौ ग्रह है, नौ धर्मों से कनेक्टेड, नौ धर्मों के नौ बीज है, तो किसके ग्रह में आचरण करना चाहिए है? किसकी छत्रछाया में रहना चाहिए? सदगुरु गुरु की छत्रछाया में रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा वृक्षपति कहा जाता है यह राहु की छत्रछाया में रहना चाहिए। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की ग्रहचारी पूरी 100% बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो क्या राहु की, राहु और केतु को जानते हो? एक राहु की ग्रहचारी, ऐसे नहीं कहते केतु की ग्रहचारी। किसकी प्रसिद्ध है? राहु की ग्रहचारी। राहु किसे कहते हैं? सिर और धड़क, उसका नाम पड़ गया केतु। अकल कौन घुमाता है? सही अकल घुमाने वाला होता है। रावण क्या करता है? अकल को ही घुमाता है। और राम क्या करता है? किसी को कुछ देता है क्या? न राम किसी को कुछ देता है, न रावण किसी को कुछ देता है। करते क्या है? देते कोई को किसी को कुछ नहीं है। सुख दुख, सुख दुख तो हर आत्मा अपना अपने आप कमाती है, लेकिन क्या देते? मत देते। रावण दुख की मत देता है, राहु की मत कहो, और राम सुख की मत देते हैं। तो राहु की ग्रहचारी कहा जाता है जो तीन चार नंबर में आने वाले भी नीचे गिर गए। भारत में खास इस सभी विकारों की राहु की ग्रहचारी पूरी 100% है। तुम सेकंड में सिद्ध करके बता सकते हो। यही भारत पावन हीरे जैसा था, कैसा था? हीरे जैसा था, अब कैसा बन गया? विकारी कौन ही सब बन गया? हीरे की मिसालें क्यों दी जाती है? हीरे की क्या विशेषता और कौड़ी की क्या विशेषता? यही भारत हीरे जैसा था, मैंने बुद्धि कैसी थी? हीरे के समान चमक मारने वाली बुद्धि थी। और अभी कौड़ी में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। कौड़ी होती है खोखली और हीरा होता है ठोस भरा हुआ। तुम भरपूर थे, अभी क्या हो गए? अभी कौड़ी को याद करते करते खोखली बुद्धि हो गई, अभी फिर जैसे हीरा जैसा बन रहा है। तो हीरे से कौड़ी जैसा, कौड़ी से हीरे जैसा, ये सारी कहानी भारत की है। कौन सी सारी कहानी सीढ़ी के चित्र में दिखाई हुई है। आज में क्या है? हीरे जैसा, और अंत में क्या है? पौड़ी जैसा जीवन बन पड़ा। बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के बिघन पड़ते हैं। ये देह अभिमान का तो बड़ा भारी बिघन पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। ये कौन सी चित्र की समझानी हुई जो अभी बताई? सीढ़ी की चित्र। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी समझाना सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका अधूरा भी बहुत मिलता है। ऐसे नहीं बात है कि सर्विस ही सर्विस है। कर्मणा सर्विस कोई सर्विस नहीं है। भोली दादी क्या करती है? कर्मणा सेवा करती है तो बहुतों को सुख मिलता है, तो बहुतों की दुआ मिल जाती है। मतलब तो सुख देने से है, चाहे बाचा की सेवा करो और चाहे कर्मणा की सेवा करो, चाहे वाइब्रेशन की सेवा करो, मनसा सेवा। तो किस्म की सर्विस है। बहुतों को सुख देते हैं तो उनका अधूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं क्या? बाचा की सेवा करेंगे, धन से भी सेवा करेंगे, धन से भी सेवा करेंगे, संबंधियों से भी सेवा करेंगे, सारे संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे, संपर्कियों से भी सेवा करेंगे, जो भी उनके संपर्क में आने वाला होगा उस संपर्क की ताकत से ही सेवा करेंगे। समय भी सारा कहाँ लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो समय की शक्ति भी कहाँ लगाएगी? तो कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं। ऑलराउंड माने हर प्रकार की खुशी रहनी चाहिए। हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले, खाना अपने हाथ से पकाते हैं। क्या था? सर्विस करने वाले जो सर्विस सेबल अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अपने हाथ से खाना पकाते हैं, तो उसे क्या फायदा होगा? दूसरे का वाइब्रेशन फिर भी अपने प्रति कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपना वाइब्रेशन अपने लिए कभी दुख देने का होगा? कभी नहीं होगा। तो अपने हाथ से जो खाना बनाया जाएगा तो बहुत पावरफुल होगा। अच्छा, स्थूल खाने की ही बात है क्या? सूक्ष्म भोजन कौन सा होता है? याद का भोजन, संकल्पों का भोजन। तो जो सूक्ष्म भोजन है, याद का भोजन, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो वायुमंडल बनाने की हर जगह सेवा करें, और जो कमजोर है वो कहेंगे संगठन की ताकत मिले, बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दे। खुद मेहनत नहीं करेंगे, कुछ चाहेंगे। तो अच्छे अच्छे रूहानी बच्चे वो अपने हाथ से खाना बनाते। हाथ माना कौन सा? अपने बुद्धि रूपी हाथ से मन चिंतन मंथन करेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। तुमको मालूम है कि बच्चे इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। किसकी गद्दी? माता पिता की गद्दी। यहाँ कौन सी गद्दी है? यहाँ ब्राह्मणों की कोई गद्दी है क्या? हुकुम जलाने की कोई गद्दी है? हुकुम जलाने की गद्दी नहीं है, यहाँ तो सेवा करने की गद्दी है। सेवा में सबसे बड़ी ब्राह्मणों की सेवा कौन सी है? ब्राह्मणों का सबसे पहला मुख्य काम क्या है? लेन देन करना, मनन चिंतन मंथन करना। तो ये हुई गद्दी। बाबा चिदाकाशी का मिसाल भी देते हैं क्या? उसका चित्र कहाँ लगा रहता था?